श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अध्याय 24 श्लोक संख्या 30 और 31। तो 30 लिखा हुआ है, आप लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। ततो अधस्ताद् रसादले दैतेजा दानवाहा पाणयो नाम निवात कवच कालेय हिरण्यपुरवासिन इति विबुध प्रत्यनिका उत्पत्त्या महोजसो महासाहसीनो भगवतः सकल लोकानुभावस्य हरेरेव तेजसा प्रतिहत बला वलेपा बलेशया इवा वसंतीये वै सर्वे इंद्रदुत्या वाग्भिर्मन्त्रवर्णाभिरिन्द्रा बिभ्यते। तो ये गद्य है, मैं पाठ कर लेता हूं। ततो अधस्तात रसाताले देतिया दानवा पणयो पणयो नाम निवात कवचा काले जो हिरण्यपुरवासिन इति विभुत प्रत्यनिका उत्पत्त्या महाओजसो महासाहसिनो भगवतः सकल लोकानुभावस्य हरेर एव तेजसा प्रतिहत बलावलेपा बिलेशया इव वसन्ति। ये वै सर्व इंद्र द्वितीया वाग्भिर मंत्र बाणाभिर इंद्राद विभ्यति। तो उसका शब्दार्थ है ततः अधस्तात् महातल के नीचे रसातले रसातल में दैतेजा दिति के पुत्र दानवा दनु के पुत्र पणयः नाम पणि नामक निवात कवच निवात कवच कालेय हिरण्यपुरवासिनः हिरण्यपुरवासी इति इस प्रकार विबुद्ध प्रत्यनिका विबुद्ध प्रत्यनिका देवताओं के शत्रु उत्पत्त्या जन्म से महाओजस अत्यंत ओजस्वी महासाहसीन अत्यंत साहसी भगवतः भगवान का सकल लोकानुभावस्य जो समस्त लोगों के लिए मंगलकारी है हरे हे श्री भगवान का एव निश्चय ही तेजसा सुदर्शन चक्र के द्वारा प्रतिहत पराजित होकर बाल शक्ति से अवलेपा तथा गर्व से गर्व खंडन होने के कारण बिल ईर्ष्या सर्प के रूप लेकर ईवा सर्प के सदृश वसंती रहते हैं। ये जो वही निसंदेह शर्मया शर्मा द्वारा इंद्र द्वितीया इंद्र की द्वितीय के वाग्भिः शब्दों से मंत्रवर्णाभिः जो मंत्र रूप में है इंद्रात राजा इंद्र से बिभ्यति डरते हैं। अनुवाद तात्पर्य श्रीमद् ऋषि भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा महातल के नीचे रसातल नामक लोक है जो दिति तथा धनु के आसुरी पुत्रों का निवास है। ये पौणी निवाट कवच काले तथा हिरणपुर वासी के नाम से जाने जाते हैं। ये देवताओं के परम शत्रु है और सर्पों की भांति बिलों में रहते हैं। ये जन्म से ही अत्यंत शक्तिशाली एवं क्रूर है और अपनी शक्ति का गर्व होने पर भी वे समस्त लोगों के अधिपति भगवान के सुदर्शन चक्र द्वारा सदैव पराजित होते हैं। जब इंद्र की नारी रूपदूत शर्मा विशिष्ट साप देती है तो महातल के असुर सर्प इंद्र से अत्यंत भयभीत हो उठते हैं। तात्पर्य कहा जाता है कि इन सर्पासुरों एवं इंद्र के बीच एक बार घमासान युद्ध हुआ और शर्मा नाम की इंद्र की दूति से जब इन पराजित असुरों की भेंट हुई तो वह एक मंत्र का जप कर रही थी, अतः वे इससे डर गए। इसलिए तब से वे रसातल नामक लोक में निवास कर रहे हैं। अमज्ञान दिविदंत ज्ञानंजन सदाकजा चक्षुरुन्मीलितं चैन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोहविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति सपदं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरूर्नवैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतम् परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता शिवशाखन्वितंश्च मुखं करोति वाचां पङ्गुमलङ्गयद्गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवं श्रीगुरुनदिनतारिणं जयतं सुरतपङ्गो मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदां भोजो श्रीराधा मदनमोहनं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम में ये पंचम स्कंद के ये पिछले एक दो अध्याय से हम लोग इन लोकालोक का वर्णन सुनते आ रहे हैं। जो अत्यंत जीवों के लिए आश्चर्यजनक है, यद्यपि हम सब जीव कई बार इन सब लोकांतर में घूम करके आए हुए हैं, लेकिन वर्तमान में हम इनको भूल चुके हैं, इसलिए आश्चर्य लगता है। तो भगवान की ये त्रिपाद विभूति अत्यंत आश्चर्यों से पूर्ण है, लेकिन ये एक सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम लोग इस वृंदावन में हैं। जो नहीं होना चाहिए, आप बोलेंगे क्यों नहीं होना चाहिए भाई, हमारा सद्भाग्य नहीं, हमारा सद्भाग्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण हमारे पर प्रसन्न है, इसमें हमारा कोई बड़ा सद्भाग्य नहीं है। कोई कितना भी बड़ा सद्भाग्य लेकर के इस वृंदावन में उनको निवास नहीं मिलता है, ये स्थान उनको नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग को जो मिला है, आप लोग को, खैर मैं तो आता जाता रहता हूं, इससे मेरा तो इतना सद्भाग्य नहीं, लेकिन आप लोग को जो स्थान मिला है वो वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण नहीं बल्कि राधा रानी की महान कृपा समझना चाहिए। आप लोग कल बरसाना गए थे और प्रार्थना करके आए कि नहीं, और कृपा दीजिए और कृपा दीजिए, राधा रानी को प्रार्थना करना चाहिए। मैं परसों गया था, एक आश्चर्य देखा मैंने, एक नाती सी बूढ़ी मैया आई, मैं जप कर रहा था बैठ करके बरसाने में, वो दर्शन करके बैठा था धूप में और जप कर रहा था, एक नाती सी माई उनके परिवार के साथ आई, उनके पुत्र वधु इत्यादि, उनके पुत्र इत्यादि साथ में आई, तो आ करके राधे 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 और उछल करके एक एक दो दो फुट उछलने लगी। वो सबका ध्यान उनकी ओर चला गया, तो उनकी बहू बोल रही, अरे आपकी ओर सब लोग देख रहे, चुप रहो ना, शर्म लगता है हमको। वो बिचारी चुप हो गई, बहू लोग है, भाई उनके हाथ का रोटी खाना है, वो चुप हो गई, लेकिन पुनः आगे जाकर के राधे 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 वो करके ऐसी ऐसी उछल कूद करने लगी है? फिर वो पकड़ती है उनकी बहू, मानती नहीं है, मैं बोला देखो इसको बोलते हैं कृपा है? और ये हम लोग है अवस्थित समय कह रहा था कि हम लोग का ये जो यहां वास है वो वस्तुतः राधा रानी और कृष्ण की कृपा से है। और भाग्य के बल पर ये जितने लोक लोकांतर का वर्णन आता है वो सब भाग्य के बल पर प्राप्त किया जाता है। जो अभी हम लोग जिनको श्रवण करते आ रहे हैं एक से बढ़कर एक है? और सुख सुविधा बहुत है, लेकिन तीस पर भी ये भाग्य से आता है, हरि कृपा से नहीं। हाँ, स्थाना अनभिलाषी या स्थाना अभिलाषी ध्रुव महाराज को भगवान ने इस लोक में एक पद दिया, वो तो हमको बताने के लिए कि देखो ये ध्रुव तारा है, इसी नश्वर लोक में शाश्वत ग्रह देख करके ध्रुव को स्थापित किया भगवान ने। है ना। और एक इस सुतल निवासी बलि महाराज, उन्होंने भगवान को सब कुछ दे दिया, फलस्वरूप उनको ये बिल्ल स्वर्ग मिला, जो स्वर्ग से कई सुख सुविधा उसमें है भगवान ने दिया। उनसे भी ज्यादा जिनके ऊपर कृपा है उनको ब्रज धाम में निवास मिलता है, और स्वयं श्री कृष्ण की कृपा, न तो नारायण की कृपा से नहीं। ब्रजन नंदन भगवान श्री कृष्ण की और उनके अलादीनी शक्ति श्रीमती राधा रानी की कृपा से इस ब्रज निवास संभव होता है। खैर, हम लोग जो पाठ करते आ रहे हैं इन श्लोकों का, उनमें पीछे एकाध श्लोक जाए, जरा देखते हैं कि उनमें क्या लिखा है, क्योंकि इसमें तो बहुत ज्यादा बोलने के लिए कोई ज्यादा है नहीं। प्रभुपाद जी इसलिए छोटा सा तात्पर्य दे दिया है, कुछ है नहीं। लेकिन इससे पहले के एक दो श्लोक पूर्व हम लोग ये बात को ठीक से देख रहे थे। कहते हैं कि ततो अदस्तात् तलातले मयोनाम दानवेंद्र स्त्रीपुराधिपतिर भगवता न पुरारिणा त्रिलोक ईशम चिकित्सुणा न निर्दग्ध स्वपुरत्रय स्तत्प्रसादान लब्ध पदो मायावी नाम आचार्यो महादेवेन परिरक्षितो विगत सुदर्शन वयो महियते। इसमें बताया गया है कि ये सुतल के नीचे जो तलातल लोक है उनमें मयदानम नामक एक महामायावी असुर, कुछ व्याख्या नहीं हुई, मैं सुन रहा था तो मैं सोचा क्यों उसकी थोड़ी व्याख्या करके बाद में हम लोग चलते हैं। यद्यपि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य नहीं लिखा है, लेकिन श्लोक आया है तो हम लोग देख लेते हैं उनको। तो वो दानवों के इंद्र, दानव सब लोग उनका बहुत बड़ा सत्कार करते हैं, जानते हैं क्यों? तो इसकी कथा इसमें निकलती है। कहते हैं कि पुरारिणा तिलोक ईशम चिकित्सुणा, भगवान शिव के द्वारा इनके इन तीन पुरियों को जला दिया गया था। सप्तम स्कंद के दसम अध्याय में श्री नाद मुनि महाराज युधिष्ठिर को ये बातें बता रहे हैं, क्योंकि सप्तम स्कंद पूरा युधिष्ठिर महाराज की राजस्वी सभा में हुआ है। तो नारद जी इस कथा को बता रहे हैं। तो कहते तब प्रसादात लब्धो, और उनके प्रसाद से, किसके प्रसाद से? शिव जी के प्रसाद से उन्होंने क्या प्राप्त किया? तो कहते हैं ये तलातल लोक को उन्होंने उनकी कृपा से प्राप्त किया है। महादेवेन परिरक्षित हो, और महादेव के द्वारा रक्षित होने के कारण विगत सुदर्शन भयो महिते, उनको सुदर्शन का भय नहीं है और वो वहां पर रहते हैं। अच्छा, भय क्यों नहीं है? क्या शिव जी तो रक्षा दुर्वासा का क्यों नहीं किया है ना? जब चक्र पीछे था तो क्यों रक्षा नहीं किया दुर्वासा का? तो देखिए ये बात है, इसलिए हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को मैं पाठ कर रहा था इस श्लोक के ऊपर, वो लिखते हैं कि उनके शिव जी के भगवान को अनुनय विनय करने के कारण सुदर्शन का डर नहीं है। जैसे जानते आप दसम स्कंद की कथा को, जब बाणासुर युद्ध कर रहा था भगवान श्री कृष्ण के साथ, जो हजार हाथ था उनके पास शिव जी की कृपा से, और उस युद्ध में शिव जी भी उतर आए। जब पराजित होने लगा तो भगवान शिव भी उस युद्ध में आ खड़े हुए और भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे, और शिव ज्वर उन्होंने फेंका इत्यादि कथा आता है। लेकिन विष्णु ज्वर से वो शिव ज्वर शांत तो हो गया और शिव जी को जम्बाएं आने लगी, तब तक भगवान ने छट 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 फटाफट काट रहे थे, उनकी सब बाहुएं काट दिया। जब चार बची तो शिव जी जरा नींद से जगे, अरे ये चार ही बच गई है इसके पास। हाँ, बोले भगवान कृपा कीजिए, कृपा कम से कम चार रहने दीजिए। बोले ठीक है। बाकी सुदर्शन का नाम क्या है? भक्ता भी रक्षणम और प्रत्यनिक भयावह। नवम स्कंद में इसके विषय में लिखा गया है, ये दो विशेषण है। भक्ता भी रक्षणम, वो भक्तों का हमेशा रक्षण करते हैं। भक्त चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, सुदर्शन को आदेश दिया है भगवान ने, जाओ जाओ मेरा भक्त जहां भजन करते हैं उनकी रक्षा करो। अगर कहीं अचानक कोई रक्षा दिखाई पड़ती है तो थैंक यू किसको बोलना चाहिए? सुदर्शन जी को पहले, बाद में भगवान का जिनका अस्त्र है। रक्षा तो प्रत्यक्ष उससे हुई। तो प्रत्या भी रक्षणम प्रत्यनिक भयावहम, और प्रत्यनिक जो प्रतिपक्ष है शत्रु पक्ष है उनके लिए अत्यंत भयावह है वो सुदर्शन चक्र। तो सुनिश्चित असुरों के लिए भयावह है, लेकिन महादेवेन परिरक्षित हो। भगवान महादेव ने अनुनय विनय करके भगवान को बोलते हैं, थोड़ा भगत है मेरा उनको थोड़ा एक ये लोग दे दीजिए। इसलिए निर्भयता से वहां सुदर्शन का चक्र नहीं, निर्भय होकर के निवास कर रहे हैं। तो वो जो कथा है, वो कथा में भगवान का जस नारद जी गाते हैं, थोड़ी कथा उनको हम लोग देख लेते हैं, है कि नहीं? उनके बाद में हम लोग जाते हैं इसमें। उन जाने के लिए कुछ बात करने के लिए इतना कुछ है नहीं है? लेकिन तिस पर भी उनमें हम लोग जाएंगे। तो ये जो प्रहलाद महाराज की कथा श्रवण करा दिया, सुना दिया नारद मुनि ने, तो उनके बाद में युधिष्ठिर महाराज के हृदय में कुछ ग्लानी मालूम पड़ा, उनके चेहरे के ऊपर कुछ ग्लानी देखा नारद जी ने। बोले अरे रे प्रहलाद महाराज कितने महान भक्त हैं और हम लोग तो तुच्छ है। तब नारद जी ने कहा कि नहीं भाई नहीं, वस्तुतः आप धन्य है पृथ्वी पर। पृथ्वी पर बोले पांडव लोग धन्य है ऐसा बोलते हैं। तो क्यों धन्य है? तो कि युयम नुलोके बदभूरी भागा लोकम पुनाना मुनियो अभियंती। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो जगत को पवित्र करने वाले आपके घर में चक्कर लगाते हैं, जो तीर्थों को भी पावन करने वाले ऋषि मुनि जन है, लोकानाम पुनानाम समस्त लोक को पावनकारी जो मुनि लोग हैं, वो कहते हैं आपके घर में चक्कर, आप भाग्यवान है। आप क्यों ग्लानी कर रहे हैं हृदय में? आपके चेहरे के ऊपर इस प्रकार ग्लानी क्यों दिखाई पड़ रही है? ये श्याम गृहाना वसती थी साक्षात गुडम परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। आपके घर में साक्षात श्री भगवान उन मनुष्य छद्म से, मनुष्य रूप का छद्म रूप से वो आपके घर में निवास करते हैं, और इसका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनिगण आपके घर में आया करते। मैं भी बारम्बार आपके घर में आया करता हूं। क्यों? क्योंकि आपका घर, भगवान ये मानते कि मेरा घर है, ऐसा मानते हैं। तो सवायम ब्रह्म कहते वही ब्रह्म जो मनुष्य रूप में सामान्य मनुष्य जैसा आचरण करते हुए हैं तो वो आपके घर में निवास करते हैं। इससे बड़े सद्भाग्यशाली कौन है? और ये कहते हुए उन्होंने भगवान का कुछ गुणगान किया, भगवान के यश का। कहते सईश भगवान राजन व्यतनोद विहितम विहतम यश पूरा रुद्रस्य देवस्य मयना अंतर माइना। और फिर एक श्लोक का उन्होंने बोलते, एक बार की घटना है राजन, इन बड़े बड़े लोग जो है वो भगवान कृष्ण के द्वारा रक्षित थे। इवन शिव जी भी एक दिन शिव जी के यश में लांछन लगाना चाहा, जब मई दानव ने, तो उस टाइम शिव जी का रक्षा किया था भगवान ने। एक जब ये बोले तो कहते राजोवाचक कस्मिन कर्मणि देवस्य मयो अह जगदीश तू। तो वो क्या बात थी कि जिसके कारण वो मई दानव ने भगवान शंकर को लांछित करना चाहा? कौन घटना थी? चरण विस्तार से बताए ना। यथा जो उपचित्ता करती ही न कृष्ण नानी कथ्यता, आप उनको पूरा पूरा बताइए, हमको बताइए कि किस प्रकार कृष्ण ने उनका रक्षण किया या उनकी कीर्ति को अपहत नहीं होने दिया, इसका आप ठीक से हमको एक कथा को बताए। तब कहते नारद वादन निर्जिता न असुरा दैवीर युद्ध ने उपनिहिते माई नाम परमाचार्य मयम शरणम शरणाम आयु। कहते हैं कि जब भगवान की कृपा से भगवान से शक्ति प्राप्त हो करके देवासुर संग्राम में देवता लोग विजेता हो गए और हारे हुए असुर वो सब मई दानों की शरण में भागे। वो महामाया भी था, इसलिए उनकी शरण में भाग करके चले गए। कहते सर निर्माय पुरस्त्री, तो उन्होंने उनकी रक्षा के लिए तीन पुर का रचना किया। तो तीन पुर क्या चीज से उनको रचना किया? बोले हेमो रोप्यर अयसी विभु, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। वो विमान क्या था? वो विमान नहीं, बहुत बड़े बड़े पुर थे और जिसमें अनेक अनेक कहते हैं कि दुर्लक्षा पाए संयोगा। पहले तो वो उनको कोई तर्कित नहीं करते थे कि ये यहां है, निश्चित नहीं। वो चलते रहते थे और कभी अदृश्य भी होते रहते थे, भूत बंगला की तरह। वो बीच बीच भाई भूत बंगला तो माया है ये, तो वो अदृश्य रहते थे। इसीलिए देवता लोग कोई एक लक्ष्य उनको नहीं कर पा रहे थे। और कहते उनमें सामान क्या? बोले दुर्वितक के परिचद्दा, उसमें इतना खान पान रहन सहन का व्यवस्था दिया था उन्होंने। लेकिन आप जानते ना असुर लोग खा पी करके शांति से नहीं रहते हैं, तब तो उनको असुर कैसे उनको पुराना बात याद आ गया न ताबिस्त असुर सेनान्यो न लोकान स्थिन से ईश्वरान रूप स्मरण तो नास्यस चक्रु पूर्व वैरम अलक्षिता। अपने पूर्व के वैर को लेने के लिए उनके हृदय में इच्छा हुई कि अभी तो हम लोग अलक्षित है, इस पूर्व के द्वारा रक्षित है, मैदानों के द्वारा जो निर्मित माया है, हम लोग उनकी माया के अंडर में है, हमारी रक्षा तो होगी ही। और ऊपर उनके ऊपर घूम करके स्वर्ग के ऊपर देवताओं को लग को मारने लगे, क्योंकि पहले से उनके वैरी थे, उन बड़े बड़े लोकपालों के साथ उनका वैर था। वो टान करके खूब उनको मारने लगे। न ततस्ते ईश्वरा लोकन उपसद्य ईश्वरम विभो, वो सब लोग वो लोकपाल के साथ सब देवता जितने बचे कुछ देवता थे वो भाग करके शिव जी की शरण में गए। बोले त्राही त्राही ना, आप हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। बोले क्या हुआ ना तावकार एव विनष्टन त्रिपुरालय, अरे ये त्रिपुर में छुप करके ये जो असुर लोग है वो हमारा नाश कर रहे हैं, इसलिए ये भगवान आप हमारी रक्षा कीजिए, आपके आशीर्वाद से बढ़ा हुआ है मैदानव। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, अठा अनुग्रहित भगवान मां। कहते मां भ्रष्ट, आप डरो मत, डरो मत, डरने का कोई चिंता नहीं है। जब हमने वरदान दिया है तो तो वो क्या ज्यादा से ज्यादा रचना कर सकता है, है? वो डरने की बात नहीं है। कहते हैं ऐसा बोल करके भगवान शिव जी ने शरम धनुष संधाया, उन्होंने एक तीर लगाया अपने धनुष पर, न पुरेषु स्त्रम व्यमुंचत। कहते हैं इन जो पूर्ववासी जन है उनको मारने के लिए भगवान ने या उनका नाश करने के लिए इन त्रिपुर का त्रिपुरारी भगवान शिव, पहले त्रिपुरारी नहीं कहे जाते थे, इसके पहले उनको पुरारी या त्रिपुरारी कहते हैं, हाँ? तो कहते हैं तो उनको एक धनुष पर तीर लगा करके उन छोड़ दिया, हाँ? व्यमुंचत पुरेषु अस्त्रम, उन पुर के ऊपर छोड़ दिया अस्त्र को। जब छोड़ा उन्होंने ततो अग्नि बाण ईश्व उत्पेतु सूर्य मंडलात, सूर्य से जैसे किरण निकलती है उसी प्रकार वो छूटे हुए बाण से नाना प्रकार का बाण निकलने लगा। एक नहीं, वो एक नहीं था, अनेक अनेक तीर का सर्जन हो रहा था। उन प्रत्येक तीर में आग उगल रही थी, जबरदस्त गर्मी पैदा की। भाई वो लोहे का था, सोने का था और चांदी का था, हाँ? तो भगवान शिव ने उपाय किया कि ये लोग कब तक रहेंगे इसमें, अरे जलकर मर जाएंगे। और हुआ भी ऐसा, वो प्रत्येक तीर यतम अयुक संदोहा न अदृश्यत पूर्व यत। कहते हैं उन नहीं दिखाई देने वाले पूर्व भी तप्त होने लगे, क्योंकि उन आग इतना उत्पन्न किया था भगवान शिव के द्वारा, नाना तीर छोड़ करके या एक तीर से अनेक तीर होकर के आग उगल रहा था। तो तैर स्पृष्टवा अव्यसव सर्वे निपेतुष्म प्रोकशत, उन पुरी में रहने वाले जितने भी वो वहां के निवासी थे, असुर लोग थे, तीनों पुर में जो उड़ रहा था तीनों किला, उन तीनों किले में रहने वाले जो असुर थे वो सब निष्प्राण हो गए दग्ध होकर के, जो कहां तक गर्मी सहन कर पाएंगे। ओ, लेकिन तानानी महायोगिन मय न कुपर शिक्षितम, कहते हैं कुप रस्य अक्षिपत, हाँ, कहते ये महायोगी नाना प्रकार का उपाय जानता था, क्या उपाय करना चाहिए, किस समय उन्होंने क्या किया, उन राक्षसों को उठा उठा करके उन्हें एक अमृत का कुंड उनमें बना हुआ था, उनमें लगे डालने मैदानों, हाँ? वो सबको उनमें डाल दिया। तो कहते सिद्धा अमृत रत स्पृष्ट सारा महोज, वो लोग उन अमृत का स्पर्श करके उनका जो शरीर है, हाँ? वो एकदम तंदुरुस्त हो गया अमृत का स्पर्श करके, और वज्र जैसा शरीर हो गया, टूटना फूटना जल ना कुछ नहीं, जाओ, हाँ? तो इस प्रकार का शरीर सबका। और महाओजस, हाँ? उनमें इंद्रिय बल और शारीरिक बल इतना बढ़ गया, ना उतस्तुर मेघ दलना वैद्युता इव बढ़ाना। कहते हैं किस प्रकार, तो बोलते हैं उन घने बादलों से जिस प्रकार बिजली चमकती है उसी प्रकार वो लोग वापस उन कुंड से निकल निकल करके उनमें सवार हो रहे होने लगे, हाँ? वापस वही का वही स्थिति हो गया। ना विलोक्य भग्न संकल्प संकल्पम विमनस्कम विशद्धजम, शिव जी म्लान हो गए ये देख करके, अरे तो मेरा उद्यम निष्फल कर दिया मैं दानव ने, हाँ? शिव जी एकदम निराश हो गए, अब क्या करें, हाँ? न तदायम भगवान विष्णु तत्र उपायम अकल्पयत, उसे भगवान ने इनका उपाय सोचा कि इसका कुछ उपाय करेंगे ना, उपाय क्या करेंगे, ब्रह्मा को बछड़ा बनाया और स्वयं गाय बन गए भगवान, हाँ? अगले श्लोक में कहते हैं कि वत्स आसित तदा ब्रह्मा न स्वयं विष्णु अयम ही गौ, भगवान गाय बन गए, ब्रह्मा जी को बछड़ा बनाया, प्रविश्य त्रिपुरम काले रस कुप्पा अमृतम पपो, वो दोनों जा करके और दिन में जा करके गाय और बछड़े ने सारा अमृत चूस लिया, चाट लिया, थोड़ा भी बचने कूप जो है वो साफ हो गया, अमृत रहित हो गया, अभी मरे हो के डाले के जिंदा नहीं करेगा, है ना। इसने भगवान ने उपाय बराबर सोचा, असुराय अभी पश्चिम तो न न्यषेधित विमोहिता, और उनकी रक्षा करने वाले जो अमृत रस का उन कुंड का रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था असुरगण, वो भी भगवान की माया से मोहित होकर के उनको रोका नहीं। अरे भाई गाय है बछड़ा है पीने दो, गाय बछड़ा तो पीते है, कितना पी जाएंगे, लेकिन तो चट कर गए पूरा, कुछ छोड़ा भी नहीं। कि तद विज्ञाय महायोगिन रस पाला निदम जगो, तो उस टाइम ये जान लिया अपनी माया के कारण, वो जान लिया कि ये भगवान गाय बन करके आए हैं, भगवान की इन लीला को जान करके वो जा करके जो रस का रक्षण कुंड का रक्षण करने वाले असुर थे उनके प्रति जा करके वो बोले, क्या बोले तो पहले पहले कहते स्वयं विशोक शोकार्ता स्मरण देवगतिम चत्ताम, उन भगवान की लीला को देख करके वो शोक रहित हो गया, बोले शोक करने का कारण नहीं, क्योंकि देव देव महादेव के देव है और उनके द्वारा ये हुआ है, इसलिए शोक वो क्या करना चाहूं, गया तो हो गया, और न तो प्रतिश्रुति का विचार किया। मई दानों में ये बहुत अच्छा गुण है, उन्होंने पांडवों का भी मदद किया, खांडव वन के समय उन पांडवों का मदद किया था, इसी के कारण सुदर्शन या शिव जी के आशीर्वाद दोनों चीज से सुदर्शन का उनको भय नहीं, मैदानों को उनको चक्र नहीं काटता है, आज भी है और भविष्य में भी रहेंगे मैदानों बिल सर्ग में भविष्य में। कहते शोकार्तान स्मरण और शोकार्ता, कहते विशोक और शोकार्ता जो शोक से पीड़ित, वो लोग बोला अरे क्या करे, गाय बछड़ा आया था ये पी गया अमृत पी गया, या वह ना देवो असुरो नरो अन्यो वा नरेश नेश्वर और अस्तित कच्चन, उन्होंने बहुत सुंदर बात बोला, बोला देखो दैव से जो होना था वो हो गया है, अभी कोई भी हो वो अपने लिए पराये के लिए या फिर दोनों के लिए जो घटना हो गई है उनके लिए शोक नहीं करते हैं, वो स्वयं ईश्वर नहीं है, वो कुछ रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए जो हो गया सो हो गया। वास्तव में भक्त लोग को चाहिए कि कभी भी बीती हुई बातों के ऊपर शोक करके रोना नहीं है, जो हो गया बट सावधानी के साथ उनको हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम असुर भी ये कार्य नहीं करते हैं, शोक नहीं करते हैं। शोक किसको कहते हैं, जो भूतकाल में घटी घटना को वर्तमान में रोते हैं उनको शोक बोलते हैं, और भविष्यत घटना को वर्तमान में रोते हैं उनको भय बोलते हैं, आने वाली हुआ नहीं है लेकिन वर्तमान अरे ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा और हो गया उनके लिए कुछ वर्तमान को देखना चाहिए, वर्तमान में हमारा भजन साधन कितना चल रहा है या इसमें क्या क्या कमियां हैं उसको देख लेना चाहिए। इन्होंने कहा, खैर उन्होंने तो प्रवचन नहीं किया, तो आत्मनो यस्वा अधिष्ठम देवेन उपहितम द्वयो, कहते अथ अशक्ति भी स्वाभि संभो प्राधानिकम विदात, और कहते हैं उनके बाद में अतः अशक्ति भी, भगवान ने अपनी शक्ति से शिवजी के लिए व्यवस्था किया, मतलब शिवजी को थोड़ा उत्साहित करना चाहिए, भगवान ने कुछ नहीं किया, उधर वो कुंड से अमृत चाट लिया पी लिया और इधर शिवजी के लिए व्यवस्था किया, ना क्या व्यवस्था किया, ना धर्म ज्ञान विदुक्ति युद्धि तपो विद्या क्रिया आदि भी रथम सूतम ध्वजम वाहन धनुर्वर्म शरादि यत्, भगवान ने फिर कहते धर्म से रथ निर्माण किया, उनके बाद ज्ञान से सारथी निर्माण किया और विदुक्ति का ध्वज और वाहन कहते युद्धित ऐश्वर्य से घोड़ा निर्माण किया और कहते तप से धनुष निर्मित किया और विद्या से विद्या से विद्या क्रिया क्रिया से सर उत्पन्न किया, सर माने तीर उत्पन्न किया, और इसी प्रकार ये ला करके भगवान शिव के हाथ में रख दिया। बोले ये लीजिए आप कुछ अभी, तो इन सब कुछ दे करके भगवान ने उनको सक्षम बना दिया। और उनके बाद में ददा हत्यन दुर्भेदा हरोर अथ त्रिपुर नृप दिवी दुदुम भयोर ने दुर्विमान सत संकुला। कहते हैं उन शिव जी ने उन तीनों पुर को जला करके त्रिपुरारी नाम भगवान की कृपा से प्राप्त किया, और ये तीनों पुर को जला करके क्षार कर दिया और इन सारे लोग को बचा लिया। तो ये घटना वो रह गई थी बताने के लिए, है ना, बीच में जो कथा पता नहीं कौन कथा किया, लेकिन ये घटना नहीं कहा था तो मैं सोचा कि मैं इस घटना को थोड़ा बता दूं, क्योंकि इतना सुंदर भगवान का यश का गान हुआ है। खैर आज के श्लोक में हम लोग ततो अधस्तात तलातले मयो नाम दानवेंद्र, वही मई दानव को तलातल शिव जी की कृपा से दिया गया है। भगवान के भक्त है शिव जी, वैष्णवा नाम जथा संभव मान वैष्णव है, इसीलिए उनकी बात को रखने के लिए भगवान ने उन मई दानव को वहां स्थान दिया। दानवेंद्र त्रिपुरा अधिपतिर पतिर भगवता पुरा अरिना। देखिए ये कथा आया, जो कथा मैंने कहा इस कथा घटना तनिदग्ध सपुर प्रसादान लप्तो, उनकी कृपा से उन्होंने लाभ किया। माया विनाम आचार्यो महादेवेन परिरक्षितो विगत सुदर्शन भयो, इसलिए विगत भय किससे, सुदर्शनात, सुदर्शन से विगत भय होकर के भय रहित होकर के वहां निवास करते हैं। आइए 31 श्लोक में जाते हैं, 30वें श्लोक में पहले हम लोग जाते हैं। ततो अधस्तात रसातल दैत्या दानवा पणिया न पणि और नाम निवात कवचा कालिया हिरण्यपुर वासिना। ये अन्य असुरों का समूह को बताने के लिए सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं इनसे भी नीचे रसाताल में दिति के और दनु के जो दैत्य और दानव, ये लोग जो है जो तीन विभ में तीन जाति में विभक्त है, वो जाति क्या है, सबको पणि बोलते हैं, मतलब पणि है, पणि राक्षस पणि असुर उनको कहते हैं, पणि दानव बोलते हैं, वो एक जाति है पूरा। लेकिन उनमें भी जैसे ब्राह्मण तो ब्राह्मण में द्विवेदी है त्रिवेदी है, ऐसे ये लोग अपने भी इस प्रकार की जातियां रखते हैं। वो कहते पणियो नाम निवात कवचा, एक निवात कवचा है, दूसरा कालेय काल कन्या से उत्पन्न ये राक्षस लोग है, काल कन्या से उत्पन्न हुए, तो ये जो असुर लोग है वो है। और हिरण्यपुर वासिन एक जाति हिरण्यपुर वासिन, इति विभूत प्रतिनिका उत्पत्तिया। कहते हैं कि ये लोग जन्म से ही देवता लोग के शत्रु है। विभूता मान देवता प्रतिनिका, उनके पहले से ही शत्रु है। और महासाहसिनो वो परम बलवान है, बहुत बलवान है और बड़े बड़े साहस जुटाने में बहुत होशियार होते हैं, साहस कर लेते हैं। लेकिन भगवत सकल लोक अनुभव से हरे एव तेज से प्रतिहत, लेकिन भगवान के तेज से प्रतिहत हो करके वो लोग बिल में घुस गए। ये जो बिल सर्ग ये जो तलातल है वहां तक उतर गए, इतना खदेड़ा था उन भगवान के तेज ने सुदर्शन चक्र ने कि वो जा करके सर्प जैसा रूप लेकर के बिल में घुस गए और रसाताल तक उतर गए डर के मारे। और वहीं रसाताल में ये लोग लेते सकल लोकानुभाव शरीर तेज सा, उन लोगों की रक्षा के लिए भगवान ने काम किया था ना। प्रतिहत बला अवलेपा बिलेशिया इव वसंती, ये वै सर्प के रूप में ये लोग वहां निवास कर रहे। प्रतिहत बला अवलेपा, उनको एक अपना दर्प घमंड था, वो घमंड तोड़ दिया कि हम बहुत बलवान हैं, वो बल को क्षीण कर दिया चक्र ने, खाली आयुध ने भगवान के, और इस प्रकार वो भाग करके वहां शरण लिए और शर्मेंद्र द्वितीय वाग्भीर मंत्र वर्णा भीर इंद्रादिव्यति और लास्ट में कहते उसी के ऊपर चक्रवर्ती ठाकुर और जितने आचार्य है उन्होंने केवल ये लास्ट लाइन के ऊपर पटपट लिखा है, इसलिए शिल प्रभुपाद महाराज भी उसी के ऊपर पटपट लिखे हैं। वो कहते हैं कि शर्मा नामक इंद्र की दूति थी, एक बार इन पणियों ने पृथ्वी को उठा करके वो तलातल लेकर के गए थे, जैसे भूपति संपत्ति है, जैसे इंद्राक्ष उठा करके भाग गया था ऐसे इतना बड़ा असुर है ना, और पूरी पृथ्वी को उठा करके वो लोग भाग गए थे और इंद्र चिंता में पड़ गए पृथ्वी का क्या होगा, पृथ्वी का क्या होगा। तो खैर उनका तो जो हुआ हुआ मालूम नहीं, लिखा नहीं, लेकिन उन्होंने उन खबर अंतर के लिए पृथ्वी कहां है वो खोजने के लिए एक दूती को भेजा। इंद्र भी चलाक है ना, है ना, असुर लोग के पास स्त्री को भेज दिया है? वो वहां गई, विजय ध्वज जी बहुत सुंदर तरीके से उनको पूरा वृत्तांत लिखते हैं। वह इतनी सुंदरी वहां आई हुई देख करके वो वेलकम वेलकम करने लगे सब, आइए आइए आइए, क्योंकि वो जिस प्रकार देखे ना आप असुर लोग मोहित हो गए थे मोहिनी में है? तो इंद्र ने शर्मा को भेजा दूती करके, बोले जाओ जाओ बिल सर्ग में इत्यादि कहीं पर भी पृथ्वी कहां रखा है उनको खोज करके आओ। तो शर्मा गई और जा करके वो वहां पर गई, देखा वहां पृथ्वी भी है सब कुछ है। तो उन्होंने उन शर्मा ने उनको एक श्राप सुनाया, बोले हे पणया, हे पणी लोग, आप लोग इंद्र के वज्र के द्वारा हत होकर के पृथ्वी पर सो जाओ। एक श्राप जैसा वचन बोली वो, और इसके कारण लोग डरते हैं, एक सुदर्शन से डरते हैं और एक डर क्या है इसके श्राप का, शर्मा के श्राप का डर है। बस उतना ही इसमें प्रपट शिल प्रभुपाद मान दिया। लेकिन मैं कह रहा था कि देखिए सबको सब स्थान मिला और हम लोग इसमें पढ़ करके हम लोग सोचेंगे अरे हम ही वृंदावन में भजन करने के लिए रह गए। इसलिए होता क्या है, अन्य इच्छा होने पर वृंदावन से अमेरिका कहां कहां डाल देती है, माया डाल देती है, बोला आप रहने के लायक, उछाल करके फेंक देगी अमेरिका। तो वाइफ मिल गए अमेरिकन, चल गए अमेरिका, वाइफ का दास, जहां वाइफ रहती है वहां रहेंगे, फुटबॉल की तरह लात मार करके भगा देते हैं यहां से। इसलिए कैसे ब्रज में जो स्थान हमको मिला है वो सर्वश्रेष्ठ दान है, ये समझिए कि ब्रह्मा इत्यादि को दुर्लभ वस्तु सुलभ हुई है। चाहे ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ कोई भी वर्ग के लोग रहते हैं उनको ये समझना चाहिए बराबर कि हमें जो स्थान दिया गया है वो स्थान सबसे पहले विरक्ति का स्थान है। भोग के लिए ब्रज में जो आते हैं वो लोग ब्रज को नहीं जानते हैं और न कभी जानेंगे, कत्ते ही नहीं। विरक्त रहते हुए व्यक्ति को अनासक्त रहते हुए केवल भगवत भजन में आसक्ति बना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अद्भुत एक सद्भाग्य उत्पन्न हो गया है हम लोग का। वो पणियों को रहने दो वहां और भले ही सुतल मिला बलि महाराज को, लेकिन हमारा सद्भाग्य को देखिए, बलि का सद्भाग्य भी कुछ नहीं है। पढ़िए आप लोग सनातन गोस्वामी पाठ के द्वारा लिखित ग्रंथ व्रत भागवतामृतम, उनमें पढ़िए पता चलेगा क्या चीज हाथ में है, अन्यथा पता नहीं चलेगा। सनातन गोस्वामी अनेक अनेक प्रकार के लोक लोकांतर का वर्णन करते हुए वहां के जो भोग है या वहां का जो वातावरण है इत्यादि का वर्णन करते हुए ले जाते हैं और सैर कराते हैं और ले जा करके कहीं नहीं रुकते, न साकेत न द्वारिकापुरी, वो सीधा लाते हैं अपने श्रोता को ब्रज वृंदावन में। अद्भुत ग्रंथ लिखा है सनातन को संपादन, यही हमारे आचार्य है। और इनको छोड़ करके इतर कथा ग्रहण करना एक तरीके से उनका अनादर है। क्या है? अनादर है। और रूप सनातन का अनादर करके, श्रील प्रभुपाद महाराज का अनादर करके कौन व्यक्ति है जो कृष्ण प्राप्ति करेगा? कृष्ण प्रेम का दूर बात रहा, दर्शन नहीं मिलेगा। दर्शन है? जिस स्कूल में हम लोग काका काका पाठ किए हैं, बोलते हैं यहां पीएचडी नॉलेज नहीं मिलेगा, सब कुछ है तुम खोजो, है ना। हम लोग को खोजना चाहिए, रीत हम लोग को देखनी चाहिए किस प्रकार ये हमको मिलेगा। देखिए क्या अद्भुत वाक्य लिखा, इयम सर्वार्थनाम वितरण महाकल्प लतिका, ये जो हमको प्राप्त है इयम, ये ब्रज वृंदावन। प्रभुदानंद सरस्वती पाठ लिखते हैं, इयम सर्वार्थनाम वितरण, समस्त अर्थों का वितरण करने वाली है ये भूमि। इसीलिए तो कुछ लोग को अमेरिका मिल गया, कुछ लोग को क्या जो चाह मिल गया। क्यों? क्योंकि कल्पलतिका, ये कल्पलत्ता है, इनका आश्रय करके व्यक्ति की जो इच्छा है उन इच्छा की वो पूर्ति कर देगा ब्रज वृंदावन। इसलिए वैराग्य में रह करके वैराग्य सारम प्रतिलब्ध बोधम, भगवान की, भगवान का विस्तृत ज्ञान प्राप्त करते हुए और इस संसार से आत्मज्ञान पर्यंत वैराग्य उत्पन्न हृदय में रखते हुए व्यक्ति को दिन रात सेवन करना चाहिए ब्रज का, अन्यथा ये कल्पलतिका है। जो चाहा वो वस्तु वो दे देगी, लेकिन हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। वो कहते हैं कि महासंतप्ता नाम यम अमृत विष्टि शिशिरता, जो महासंताप से जीव नाना प्रकार के दुख से पीड़ित होकर के जब वो आया है तो उनके हृदय में तो बिल्कुल शीतलता का वर्षा करने वाला ब्रज वृंदावन है। यह अद्भुत वृंदावन है। कहते यम अमृत वृष्टि शिशिरता, उनका अमृत देख करके अपना और उनका पालन करती है ये भूमि, अद्भुत भूमि है। कहते यम कृष्ण प्रेमा अद्वसु विरचिता लोल मनसो, और जिनके लोभ, जिनके मन में कृष्ण प्रेम का लोभ है उनके लिए तो बिल्कुल, बोलते हैं उनके लिए तो बात ही क्या है, अद्भुत है। क्यों? वो चाहने वाले व्यक्ति उन प्रेम मार्ग पर जो चल रहा, प्रेमा अद्वसु विरचिता लोल मनसो, उन कृष्ण प्रेम को चाहने वाले लोग यहां कभी निष्फल नहीं होते, कभी नहीं, और कभी बाधित नहीं होते किसी भी प्रकार से। ये वस्तु शक्ति है, लेकिन मन में हमारा इच्छा क्या है, वो लोभ, इसलिए कहते हैं लोल मनसो कृष्ण प्रेमाद्वसु। भगवत प्रेम मार्ग में, कृष्ण प्रेम मार्ग में जिनका मन लोभी है तो कहते अद्भुता विंदा टिविम उलसति रस विश्रांति रचना, और कहते हैं उनके लिए तो अद्भुत है, क्योंकि जहां समस्त रसों का विश्रांति, समस्त रस, जो रस चाहिए जिस रस का भक्त है बस उसको वो रस, वो अटवी देने वाली है ये भूमि, देने वाली है। वहां ये भई है, वहां वो भई है, देख लिया ना, संसार भय से भरा हुआ है। और हम निर्भय स्थान में जब हमको भगवान ने बिठा दिया है तो अत्यंत प्रेम के साथ भगवान के भजन में व्यक्ति को लगना चाहिए। और एक श्लोक नौ ऊपर में, लेकिन फिर भी एक श्लोक से, एक श्लोक बस, अहो वृंदारण्यम मधुरम मधुरम सुंदर तमम भवेत नाभातम निशेष निशेष निशेषम इव सताम साकृति, सताम साकृति। कहते अहो ये वृंदावन मधुर से मधुर, और अत्यंत सुंदर तमम आभात, वो उनको मालूम पड़ता है जो केवल भगवत भजन का लोभ लेकर के यहां पर है, उनको कुछ नहीं है, यश नहीं, सबको धूलि समझते हैं। अगर वो व्यक्ति है ब्रज में तो कहते सताम साकृतिम चिरम, वो तो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में उन भगवान की लीला अनुभूति कर सकता है। ब्रज में तो लीला हुई है, ब्रज में निरंतर हुई नहीं, हो रही है, निरंतर हो रही है। लेकिन कहते हैं नितराम श्रेय चाहने वाला व्यक्ति चाहिए। हाँ, अगर इच्छा किया बाहर फेंक देते हैं वृंदावन, जाओ जाओ हटो यहां से, कल्पलती का। हाँ, और उनके लिए सुंदर से सुंदरतम वृंदावन है। बोले साकृतिम वसंत चीरम, बोले जल्दी से जल्दी उन साधु के हृदय में वो रस उडेल देगी वृंदावन भी। लेकिन कहते हैं मैं एक दुर्भगा व्यक्ति हूं, यह हमारा दुर्भाग्य है, प्रबोधानंद सरस्वती पाद का नहीं। हाँ, वो क्या लिखते हैं, बोले वसंत असंतोषात यद अपराध अंकुर भृते न। लेकिन मैं कहते हैं असंतुष्ट होकर के ब्रज में निवास करता हूं, इसलिए अपराध नाना प्रकार का मुझसे बन जाता है। क्योंकि अपराध का कारण क्या है, असंतुष्टि। सब तरीके से संतुष्ट रह करके जो व्यक्ति भजन करता है, कोई उनको गाली दे संतुष्ट, कोई उनका सम्मान करे संतुष्ट, वो कोई असंतोष नहीं है, इसको किसी के प्रति अपराध नहीं होगा। इसे कहते वसंतो असंतोषात इह, इस भूमि में जो असंतुष्ट होकर के निवास करने वाले लोग हैं, यदि अपराध अंकुर भृते, उनके हृदय में अपराध उत्पन्न होता है, अंकुरित होता है असंतुष्टि के कारण। इसे सद राधा कृष्ण प्रणय रस अनुभवी न, इसलिए मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि मैं इन राधा कृष्ण के रस अनुभूति मेरा हृदय नहीं कर पा रहा है। अरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। देखिए पूरा प्रकरण पूरा हो रहा है, इसलिए मैं सोचा कि ठीक है ये पूर्ण हो रहा है, तो हमारे हाथ में क्या है, सबसे बड़ी चीज या सबसे अच्छा स्थान भगवान ने दिया है इन लोग को, भाग्य के बल पर कुछ को मिला है, कुछ को शिव जी की कृपा से मिला है, लेकिन हमको राधा रानी की कृपा से ब्रज वृंदावन मिला है। चंद्रराज श्रीमद भागवतम की श्री प्रभुपाद महाराज की जय, निताई गौर हरि प्रेमानंदे।